मुरली कृष्ण प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो हर तरह से सीनियर है मुझसे, लेकिन मेरे रिक्वेस्ट को मान लेते हैं। सो अभी जो हमने षट गोस्वामी अष्टकम गाया, ये श्रीनिवास आचार्य द्वारा रचित है। सो आज क्योंकि श्रीनिवास आचार्य का आविर्भाव दिवस है, तो हमने भजन गा के हम उनकी कृपा याचना कर रहे हैं कि श्रीनिवास आचार्य हमें अपनी कृपा प्रदान करें। और श्रीनिवास आचार्य जो है वो चैतन्य महाप्रभु के जो भाव हैं, एक्सटेसी हैं, उनके अवतार हैं श्रीनिवास आचार्य, है ना। और श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हैं, और उनके जो माता पिता हैं वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत महान भक्त थे, है ना। उनके पिता का नाम था गंगाधर भट्टाचार्य और उनकी माता का नाम था लक्ष्मी प्रिया देवी। सो जब चैतन्य महाप्रभु कटवा में संन्यास ले रहे थे और मधु नाम का जो नाई है उनके बाल काट रहा था चैतन्य महाप्रभु के, तो बहुत विलाप किया गंगाधर भट्टाचार्य ने। सभी लोग विलाप कर रहे थे, नाई भी जो है वो भी विलाप कर रहा था, बेहोश हो गया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आदेश था तो पालन करना पड़ा उसको। सो उस दिन से जो है और उस दिन पहली बार दर्शन किए थे गंगाधर भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु के भक्त पहले से ही थे, और चैतन्य महाप्रभु से मिलने पूरी जा रहे थे, तो उनको पता चला कटवा में महाप्रभु संन्यास ले रहे हैं, तो फटाफट वहाँ गए और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन गए, बेहोश हो गए। चैतन्य महाप्रभु के इतने सुंदर केश उन्होंने देखे कि चैतन्य महाप्रभु ने दान कर दिए वो केश। और जब वापस घर आए, चखंडी में रहते थे, जब घर आए तो हमेशा चैतन्य महाप्रभु ही नाम लिए जा रहे थे, तो लोगों ने उनका नाम डाल दिया चैतन्य दास। सो एक बार जो चैतन्य दास हैं अपनी पत्नी के साथ मिलने गए महाप्रभु को पुरी में, और एक्चुअली में श्रीनिवास आचार्य के बारे में बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो आमतौर पे इतनी इजीली उपलब्ध नहीं रहती, है ना। सो जब महाप्रभु से मिलने गए तो सो महाप्रभु ने बोला उनको, आप जाके जगन्नाथ जी के दर्शन करके आओ। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ दर्शन करने के लिए गए, और वापस आए तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने सर्वेंट को बोला कि मैं रूपा और सनातन गोस्वामी के माध्यम से भक्ति के ग्रंथ लिखवाऊंगा, प्रकाशित करूंगा, और श्रीनिवास आचार्य के माध्यम से मैं उसको उसका वितरण करूंगा, है ना। सो जो श्रीनिवास आचार्य हैं वो उनके शिक्षा गुरु थे नरहरि सरकार, तो उन्होंने नरहरि सरकार से पूछ के ही सब काम करते थे। श्रीनिवास आचार्य ने कभी चैतन्य महाप्रभु के लीला में दर्शन नहीं किए, हाँ वो चैतन्य महाप्रभु का पहले ही अंतर्धान हो चुका था, अप्रकट हो चुके थे, अंतर्धान तो नहीं हुए, अप्रकट हो चुके थे। सो श्रीनिवास आचार्य ने रिक्वेस्ट किया नरहरि सरकार को कि आप प्लीज़ मुझे दीक्षा दीजिए, तो नरहरि सरकार ने बोला आपकी दीक्षा का अरेंज हो चुका है पहले, आपकी दीक्षा मुझसे नहीं होगी, आपकी दीक्षा गोपाल भट्ट गोस्वामी से होगी। पहले से सब डिसाइडेड था कि कैसे चीज़ें होंगी, और चैतन्य महाप्रभु ने अप्रकट होने से पहले गदाधर पंडित, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीवा गोस्वामी, इन सबको चिट्ठियां लिख लिख के भेजा था कि एक भक्त प्रकट होने वाला है, भक्त का जन्म होने वाला है, आप प्लीज़ उनका ध्यान रखना। और गदाधर पंडित को तो चैतन्य महाप्रभु ने यह भी कहा था कि आपसे मिलने आएगा श्रीनिवास, तो आप इसको श्रीमद् भागवतम की शिक्षा देना। तो खैर समय आने पर जो श्रीनिवास आचार्य गए पुरी अपने पिता के देहांत के बाद, और माता जो है उनके उनके जो अन्य भाई थे उनके पास जाकर ठहरी थी, तो नरहरि सरकार की आज्ञा लेकर वो गए पुरी की ओर, और वहाँ पर जाकर वो मिले गदाधर पंडित से, और गदाधर पंडित ने कहा ठीक है मैं आपको श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दूंगा। तो उन्होंने अपनी किताब निकाली श्रीमद् भागवतम की, उस समय छपी हुई किताबें नहीं होती थी, है ना, उस समय तो हाथ से लिखे हुए जो है ताम्रपत्र पर लिखी हुई होती थी मैन्युस्क्रिप्ट्स, उससे काम चलता था, है ना। सो जब उन्होंने निकाली तो गदाधर पंडित ने कहा कि इस किताब से मैं आपको पढ़ा ही नहीं सकता। लोग क्यों नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उनके आंसुओं से, गदाधर पंडित के अश्रुओं से वो इतनी गीली हो चुकी थी किताब पे कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा था। तो गदाधर पंडित ने बोला कि आप जाओ, जाकर दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट लेके आओ तो मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो फटाफट गए वो बंगाल और वहाँ से मैन्युस्क्रिप्ट लेके आए, लेकिन तब तक गदाधर पंडित का जो है वो अप्रकट हो चुके थे गदाधर पंडित। तो बहुत निराश हो गए, बहुत हताश हो गए, और लेकिन गदाधर पंडित ने उनको स्वप्न में दर्शन दिया उनको। तो हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी ऐसा वर्णन आता है कि कहने में आता है कि स्वप्नेर छले, कि स्वप्न के माध्यम से जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किसी को कुछ आज्ञा दी, या स्वप्न के माध्यम से जैसे गदाधर पंडित ने उनको सांत्वना दी, तो हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो स्वप्न है ये एक्चुअली में हमारे वाला स्वप्न नहीं है जो हम खराटे मार के सो रहे हैं और कुछ सपने में आ जाते हैं। हमारे आचार्य कह रहे हैं कि स्वप्न छले का मतलब है स्पिरिचुअल विजन, कि जो उनको आध्यात्मिक दृष्टि, आध्यात्मिक दृश्य उनको दिखा श्रीनिवास आचार्य को, और उनको सांत्वना दी गदाधर पंडित ने, और उनको बोला कि आपको सब शिक्षा बराबर से मिलेगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब पुरी में थे तो पुरी में रहते हुए वो सार्वभौम भट्टाचार्य से मिले, रामानंद राय से मिले, शिखी माहिती से मिले, बहुत सारे भक्तों से मिले, और सब भक्तों ने उनको बोला कि आप जो है वृंदावन की ओर प्रस्थान करो और वहाँ पर रूप और सनातन गोस्वामी की शरण ग्रहण करो। तो श्रीनिवास आचार्य चले वहाँ से वृंदावन की ओर। तो रास्ते में बहुत जगह वो रुके, पहले वो रुके जाकर नवद्वीप में, और नवद्वीप में वो विष्णुप्रिया देवी से मिले, चैतन्य महाप्रभु की धर्मपत्नी से मिले, हाँ, और वंशीवदन ठाकुर से मिले, और भी अनेक भक्तों से मिले, ईशान प्रभु से मिले, और उनको विष्णुप्रिया देवी ने बहुत आशीर्वाद दिया उनको, और उनको वृंदावन जाने के लिए प्रोत्साहन दिया। तो वहाँ से चले वो, तो खरदहा गए। खरदहा में, खरदहा क्यों गए, क्योंकि खरदहा जो है वहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु निवास करते थे, है ना। सो खरदहा गए, तो खरदहा में वहाँ पे नित्यानंद प्रभु भी अप्रकट हो चुके थे तब तक, लेकिन वहाँ पर जाकर मिले। खरदहा आप में से कोई गया है, खरदहा मुरली कृष्ण प्रभु गए, कलकत्ता के बहुत पास है, आप लोग कभी जाएं तो आप कलकत्ता जैसे मायापुर जाते हैं तो कलकत्ता उतरते हैं, तो कलकत्ता से वहाँ पे श्री भगवान दास आचार्य का श्रीपाठ मतलब रेजिडेंस, तो श्री भगवान दास आचार्य की रेजिडेंस भी पास में ही है, और वहाँ से आप ऑटो वगैरह पकड़ेंगे तो बस पकड़ेंगे खरदहा चले जाएंगे, मैक्सिमम मेरे ख्याल 15-20 मिनट आधा घंटा लगेगा खरदहा के लिए, है ना। सो आप सब लोगों को अवश्य जाना चाहिए, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के विग्रह हैं, गौर नेताय के विग्रह हैं, और वहाँ पर जानवा जो देवी हैं वो उपस्थित थी। सो जानवा देवी ने अपने जो चरण रज उनको प्रदान की श्रीनिवास आचार्य को। सो जानवा देवी के जो पुत्र हैं नित्यानंद प्रभु के पुत्र, हाँ, वीरभद्र, उनसे मिले वो। फिर वहाँ से वो खानाकुल चले गए, और खानाकुल जाके वो अभिराम ठाकुर से मिले, है ना। अभिराम ठाकुर जो है वो द्वादश गोपाल में से एक हैं। हाँ, पहले उनका जो नाम था वो श्यामदास, क्या नाम था, ओके। सो अभिराम ठाकुर के पास, वो श्रीधाम है कृष्ण लीला में। सो उनके पास एक कोड़ा था, विप, उसका नाम था जयमंगल। तो उनकी पत्नी का नाम था मालती। सो मालती ने कहा, अरे इतना कोमल बालक है, इसको मत मारो। लेकिन अभिराम ठाकुर ने 3 कोड़े उनको मारे खींच के श्रीनिवास आचार्य को, और उनको कृष्ण प्रेम से संचारित कर दिया उनको, है ना। और खानाकुल से फिर वो कटवा गए, और कटवा में वो स्थान देखा जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। फिर वहाँ से वो अग्रद्वीप आए। आप लोग अगर नवद्वीप से अगर आप ट्रेन पकड़ते हैं कटवा के लिए, तो तीसरा चौथा स्टेशन आता है अग्रद्वीप का। सो अग्रद्वीप में घोष बंधु रहते थे, हाँ, वासुदेव घोष, गोविंद घोष और माधव घोष। तो इनकी स्पेशलिटी क्या है, इनकी स्पेशलिटी है कि ये एक तो बहुत महान भक्त हैं, और दूसरा इनका जो श्राद्ध है, स्वयं कृष्ण इनका श्राद्ध संपन्न करते हैं। आप जाएंगे अग्रद्वीप में, थोड़ा सा मुश्किल है वहाँ पे जाना, काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो एक पर्टिकुलर दिन है, उस दिन भगवान कृष्ण इनका श्राद्ध संपन्न करते हैं वात्सल्य भाव में, है ना। तो श्रीनिवास आचार्य वहाँ गए, उधर उन्होंने दर्शन किए, फिर बनारस गए, वहाँ से इलाहाबाद गए, और फाइनली वृंदावन पहुँचे। लेकिन वृंदावन जब पहुँचे तो उनके पहुँचने से 3 दिन पहले ही जो है रूपा गोस्वामी उनका तिरोभाव हो चुका था। तो बहुत दुख हुआ उनको, और फाइनली उन्होंने शरण ली गोपाल भट्ट गोस्वामी की, और गोपाल भट्ट गोस्वामी से उन्होंने दीक्षा ली, और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको सुपुर्द कर दिया जीवा गोस्वामी के, जीवा गोस्वामी से शिक्षा लेने के लिए, है ना। सो जीवा गोस्वामी के बहुत शिष्य थे, लेकिन 3 शिष्य मुख्य थे उनके, है ना। सो एक तो श्रीनिवास आचार्य थे, और दूसरा नरोत्तम दास ठाकुर थे लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य, और तीसरा श्यामानंद प्रभु, हाँ, दुखी कृष्णदास, वो किनके शिष्य थे, श्री हृदय चैतन्य के, है ना। सो उन तीनों को वो शिक्षा दे रहे थे, और फाइनली जीवा गोस्वामी ने, और जीवा गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य को आचार्य की उपाधि प्रदान की थी, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट थे वो, उन पर सरस्वती जी की बहुत कृपा थी, और सरस्वती जी ने कहा था कि मेरी कृपा से तुम सभी जो शास्त्र हैं उसमें पारंगत हो जाओगे। और श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, ये तीनों हमारी पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी थी। तो ये तीनों मिलके बैलगाड़ी में रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के ग्रंथ लेकर ये लोग गए। फिर आप सबको पता ही है कि किस प्रकार उनके ग्रंथ चोरी हो गए वन विष्णुपुर के पास में। और श्रीनिवास आचार्य ने जो वहाँ का जो राजा था, जिसने वो ग्रंथ एक्चुअली में चुराए थे, वो छुपकर डाके डालता था, दिन में राजा रात में डाकू। तो श्रीनिवास आचार्य ने उसको भागवतम का उपदेश सुनाया। उनके जो राजा था विष्णुपुर का, उसके दरबार में एक भागवतम कथा करने वाला व्यक्ति था, व्यासाचार्य। तो श्रीनिवास आचार्य बैठ के सुन रहे थे उसकी भागवतम कथा, और बोला, ये क्या तुम बोल रहे हो, क्या तुमने कभी श्रीधर स्वामी की टीका नहीं पढ़ी क्या, बिल्कुल उल्टी बातें तुम बता रहे हो। तो व्यासाचार्य को बहुत गुस्सा आ गया, उसने बोला, कैसे कह दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी ऐसा कहने की। तो लेकिन राजा ने बोला, चलो इनको भी मौका दो बोलने के लिए, इनसे सुनते हैं कि ये कैसे श्रीधर स्वामी के अनुसार जो है टीका देते हैं, व्याख्या करते हैं। तो उन्होंने व्याख्या की, और व्याख्या सुनते ही वो राजा ने श्रीनिवास आचार्य की शरण स्वीकार की, उनसे दीक्षा ली, और पूरे राज्य को उन्होंने वैष्णव बना दिया। और शाम को उनसे मिलने आए उस दिन, और उन्होंने वो ग्रंथ उनको समर्पित किए, बोले कि ग्रंथ मैंने चोरी कर लिए थे, ये ग्रंथ मैं आपको लौटाना चाहता हूँ, है ना। सो वैष्णो के कहने पर श्रीनिवास आचार्य ने विवाह किया और उनके दो विवाह किए थे उन्होंने और उनके कई संतान थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संतान थी उनकी हेमलता ठाकुरानी, है ना। वो हेमलता ठाकुरानी ने समय आने पर बहुत सारे वैष्णवों को संरक्षण दिया, शिक्षा दी उनको, ठीक है। सो बाद में श्रीनिवास आचार्य वापस वृंदावन गए और सारे भक्तों से मिले और सबको बताया कि कैसे कैसे सारी चीज़ हुई है, है ना। सो श्रीनिवास आचार्य के बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं और प्लस आप सब लोगों को ये जो षट गोस्वामी अष्टकम है, है ना, जो श्रीनिवास आचार्य ने लिखा है, इसका तात्पर्य मेरा रिक्वेस्ट है आप जरूर पढ़िए, है ना। श्रीनिवास आचार्य की क्योंकि आज श्री राधा रमन जी का प्राकट्य दिवस भी है, आप सबको पता ही है कि जो श्री राधा रमन जी हैं वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के गहन भाव के कारण प्रकट हुए, है ना। इतना विरह था उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी को कि श्रीनिवास आचार्य जो हैं वो मानसी सेवा में बहुत व्यस्त रहते थे वो, है ना, और कई बार वो आध्यात्मिक जगत से वो वस्तुएं लेके आए जो कि देखी जा सकती हैं, है ना। सो एक बार उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को स्वर्ण सिंहासन पर बिठा के उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए उनसे और उनके गले में उन्होंने हार डाला और जब वो अपनी मानसी सेवा से बाहर आए तो हार उनके गले में डला हुआ था, है ना। एक बार श्रीनिवास आचार्य मानसी सेवा में श्रीमती राधा रानी की सेवा कर रहे थे और होली का अवसर चल रहा था तो श्रीमती राधा रानी को रंग सप्लाई कर रहे थे, कलर्स, है ना, और जब वो उनकी मानसी सेवा से बाहर आए, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आए, तो उनके सारे कपड़े, चेहरा वहरा सब रंगों से भरा हुआ था उनका, है ना। आप लोग इस पे मेडिटेट कर सकते हैं और उनकी कृपा याचना कर सकते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी के गहन विरह भाव के कारण, उनकी गहन इच्छा के कारण राधा रमन जी प्रकट हुए। आप सबको पता है चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था स्वप्न में कि आप जाओ नेपाल की यात्रा करके आओ। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए थे दक्षिण भारत में और जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से चले गए थे उसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्रकट लीला में चैतन्य महाप्रभु के दर्शन नहीं किए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि आप माता पिता के ध्यान के बाद वृंदावन आ जाना और वहीं पर रहना। गोपाल भट्ट गोस्वामी जगन्नाथपुरी नहीं गए और वहीं पर वृंदावन में रुके हुए थे और बहुत उनको विरह हो रहा था चैतन्य महाप्रभु से, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि आप जाके नेपाल की तीर्थ करके आओ, भ्रमण करके आओ। तो वहाँ पर गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे तो कमंडलू डुबाया तो उसके अंदर शालिग्राम शिला आ गई, हाँ, तो उन्होंने कहा पता नहीं कैसे गलती से आ गई, उल्टा दिया वापस उसमें, दोबारा डुबकी लगाई, दोबारा शालिग्राम शिला आ गई, फिर तीसरी बार डुबकी लगाई उसको खाली करके कमंडलू को, तो दोबारा से वो 12 शालिग्राम शिला थी वापस उनके कमंडल में आ गई, है ना। उन्होंने सोचा कि शायद भगवान की इच्छा है, तो वो 12 शालिग्राम शिला को लेके आए और उनकी पूजा कर रहे थे। नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, है ना, नरसिंह चतुर्दशी जो कल का दिन है ना, इसीलिए आज प्रकट हुए, अभी लिंक हो जाएगा, है ना। नरसिंह चतुर्दशी के दिन एक कोई सेठ उनको बहुत सारे वस्त्र आभूषण देके गया था। उन्होंने बोला आप किसी और को दे दो, किसी काम के नहीं, मेरे पास तो शालिग्राम शिला है, मैं कैसे श्रृंगार करूंगा, नहीं नहीं आप रखिए प्लीज। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सोचा काश भगवान का विग्रह होता मेरे पास में तो मैं उनका श्रृंगार करता। तो ये जो इच्छा थी उनकी गोपाल भट्ट गोस्वामी की, वो इच्छा नरसिंह चतुर्दशी के दिन उन्होंने ये इच्छा की थी। और अगले दिन सुबह जब वो उठे तो उसमें से एक शालिग्राम शिला जो है वो बदल गया था उनका स्वरूप, और श्री राधा रमन जी प्रकट हो गए, श्री श्री राधा रमन की जय। सो उन्होंने बुलाया रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सबको बुलाया और दर्शन, सबने दर्शन किए, उनको इंस्टॉल किया और उनकी पूजा शुरू की। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को चिंता थी कि कैसे, मतलब आगे सेवा चलती रहेगी। तो उनके शिष्य थे, उनके दो शिष्य थे मुख्य रूप से गोपाल भट्ट गोस्वामी के, एक तो श्रीनिवास आचार्य, चलो याद है आपको, एक तो श्रीनिवास आचार्य थे और दूसरे थे गोपीनाथ पुजारी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने गोपीनाथ पुजारी को बोला कि तुम सेवा शुरू करो और विवाह कर लो, ताकि वंश चलता रहेगा और सेवा चालू रहेगी। तो गोपीनाथ पुजारी ने बोला कि मैं तो विवाह नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरा भाई है दामोदर, तो आप प्लीज़ उसको पूजा में लगा दीजिए और वो विवाह भी करना चाह रहा है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने दामोदर पुजारी को लगाया सेवा में, और जो राधा रमन जी की जो सेवा हो रही है वो दामोदर पुजारी के वंशज ही चले आ रहे हैं सेवा के लिए। और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि बहुत अच्छे से सेवा होती है, जो सेवा का स्टैंडर्ड जो है राधा रमन जी का बहुत अच्छा है, और जो ज्वेलरी, जो सामान उनको प्रदान किया था उस सेठ ने, वो आज भी उपलब्ध है। वो ताले में रखते हैं, वो ताले की तीन चाबियां हैं, अगर तीन चाबियां लगेंगी तो वो खुलेगा, और तीन अलग अलग फैमिलीज के पास में वो चाबियां हैं, आज तक एक भी चीज खोई नहीं। तो शिला प्रभुपाद ने बोला अपने शिष्यों को, भैया ऐसे ध्यान रखना जरा, है ना, ऐसे ही जो है भगवान की जो वस्तु है तदीय वस्तु, उसका ध्यान ऐसे ही रखना चाहिए, है ना। और इससे ही संबंधित, पूरी तरह से संबंधित तो नहीं है, तो एक बार जब इस्कॉन स्थापित हो चुका था, एक बार शिला प्रभुपाद वृंदावन में उस समय रुके हुए थे, तो राधा रमन मंदिर के उस समय जो पुजारी थे वो आए, और उन्होंने शिला प्रभुपाद को एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली। उन्होंने तो बहुत कैजुअली बोली थी, लेकिन प्रभुपाद ने बहुत सीरियसली ले लिया उस बात को, है ना। सो उन्होंने बोला कि आपकी प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी है, आपके बाद कौन संभालेगा इसको। तो प्रभुपाद के कान खड़े हो गए। प्रभुपाद ने बोला, ये तो सब लोग, ये जो कृष्ण बलराम मंदिर है, लोगों की नजरें लगी हुई हैं इस पर, क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने फौरन जो है गोपाल कृष्ण, उस समय गोपाल कृष्ण गोस्वामी जो है उनकी उसमें संन्यास दीक्षा नहीं हुई थी, तो उन्होंने बुलाया गोपाल कृष्ण और अन्य जो मुख्य भक्त थे, शिष्य थे, उनको बुलाया और उनको बोला फौरन आप एक GBC की गठन करो, ताकि मेरे बाद जो है सेवा सुचारू रूप से चलती रहे और जो भगवान की संपत्ति है उसकी रक्षा हो जाए, ऐसा नहीं हो कि पूरी संपत्ति तितर बितर हो जाए। तो ये जो आइडिया श्रील प्रभुपाद के दिमाग में राधा रमन मंदिर के पुजारियों ने डाल दिया था, ये आइडिया, है ना। सो प्रश्न ये है कि हम लोग क्यों वैष्णव जो आचार्य हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, नहीं, आखिर हम क्यों चर्चा करते हैं। चलो कृपा तो मिलेगी, ये बात तो है, कृपा मिलती है। शिव जी जब बोलते हैं पार्वती जी को तदीय नाम समर्चनम, कि जो तदीय वस्तु है, जो कृष्ण से संबंधित वस्तु है, वैष्णव जो है उनकी जो अर्चना है, उनका जो प्रभाव है वो भगवान के प्रभाव से भी अधिक है, है ना। तो कैसे इस बात को समझे, इसका प्रमाण हमें कल के दिन मिला, नरसिंह चतुर्दशी के दिन, और शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं इस तदीयानाम समर्चनम को, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं भागवतम के सातवें स्कंद के अंदर, सातवें स्कंद के पहले अध्याय में प्रभुपाद व्याख्या में बता रहे हैं कि आखिर हिरण्याकशिपु को भगवत कृपा कैसे मिल गई। हमने मान लिया कि कंस शिशुपाल तो कृष्ण स्मरण कर रहे थे, नहीं चाहे ईर्ष्या में कर रहे थे चाहे डर से कर रहे थे, लेकिन कृष्ण स्मरण कर रहे थे तो उनको कृष्ण कृपा मिल गई। लेकिन हिरण्याकशिपु कृष्ण स्मरण नहीं कर रहा था, तो फिर हिरण्याकशिपु को कैसे भगवत कृपा प्राप्त हो गई, कैसे भगवान ने अपने हाथों से उसका वध कर दिया, कैसे उसको ये सौभाग्य मिल गया कि भगवान का स्पर्श उसको प्राप्त हो गया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं क्योंकि हिरण्याकशिपु हमेशा प्रहलाद महाराज का स्मरण कर रहा था, यार ये कैसा बच्चा है, बात ही नहीं मान रहा, मेरे दुश्मन का भजन किए जा रहे हैं और खुद तो भजन कर रहा है दूसरों को भी बिगाड़ रहा है, नहीं तो क्योंकि वो निरंतर प्रहलाद महाराज के बारे में सोच रहा था इसीलिए उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम किसी भक्त के बारे में अनुकूल भाव से सोचे, भक्त इतने उनका प्रभाव इतना सशक्त होता है, इतना प्रभावशाली होते हैं भक्त कि भगवान की तरह अगर उनको प्रतिकूल भाव से भी अगर उनका निरंतर ध्यान करते रहेंगे तो भी कृपा प्राप्त होगी, और अगर अनुकूल भाव से किया तो कहने क्या, सोने पे सुहागा है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो प्रभुपाद वहाँ पे बता रहे हैं, इसीलिए हम अपने जो वैष्णवाचार्य हैं उनकी हम अनुकूल भाव से, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि प्रतिकूल भाव से हिरण्याकशिपु बन जाओ, ऐसा नहीं मैं कह रहा, सो अनुकूल भाव से अगर हम उनकी बारे में स्मरण करेंगे, उनकी कृपा याचना अगर हम करेंगे तो कुछ डाउट नहीं है, 1% भी, 1% भी संशय नहीं है कि हमें उनकी कृपा प्राप्त होगी, है ना। और एक बार गौर किशोरदास बाबा जी महाराज थे, उन्होंने सनातन गोस्वामी के तिरुभाव के दिन, तो उनके सेवक थे, सेवक का नाम था बिहारी, तो उन्होंने बोला आज हम जो है सनातन गोस्वामी के तिरुभाव के लिए उपलक्ष्य में बहुत बड़ा फेस्टिवल का आयोजन करेंगे, बहुत बड़ा उत्सव मनाएंगे। तो बिहारी ने बोला एक पैसा नहीं है जेब में, आप तो वैरागी हो, आप ना खुद एक पैसा रखते हो ना मुझे रखने देते हो, तो फेस्टिवल मनाएंगे कैसे। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने बोला इसमें क्या बड़ी बात है, हम फास्टिंग करेंगे और चैंटिंग करेंगे, और फास्टिंग और चैंटिंग के द्वारा हम बहुत भव्य तरीके से जो सनातन गोस्वामी है उनका तिरुभाव उत्सव बनाएंगे, ठीक है। तो हम सबको समझना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि हम लोग प्रसाद की आशा में बैठे रहें, है ना, हमें जो प्रसाद भी कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। हमारा जो ये आंदोलन है ये भागवत विधि पर आधारित है ना, और भागवत विधि है कि हम जो भी काम करते हैं उसको हम संपन्न करते हैं व्रत के द्वारा और चैंटिंग के द्वारा। तो आज के दिन विशेष रूप से हमें बहुत जप करना चाहिए और व्रत करना चाहिए, कम खाना चाहिए, उपवास करना चाहिए, और हमें वैष्णव की कृपा याचना करनी चाहिए। माधवेंद्रपुरी जी के बारे में आप सब जानते हो, है ना, माधवेंद्रपुरी जी वे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो नाथ द्वारा में जो डेटीज हैं श्रीनाथ जी उनको खोजा, उन्होंने खोजा क्या, गोपाल स्वयं हाथ पकड़ के लेके गए थे उनको, देखो मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ, मैं दबा हुआ हूँ, मुझे निकालो बाहर और मेरी पूजा शुरू करो, है ना। सो आप सबको उस बारे में पता है, उसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और माधवेंद्रपुरी श्रीपाद जो है वो मध्वाचार्य के परंपरा में थे और माधुर्य भाव में भगवान की सेवा कर रहे थे, माधुर्य भाव में सेवा कर रहे थे। और श्रीमती राधा रानी जी का एक श्लोक उन्होंने प्रकट किया, वो श्लोक मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ माधवेंद्र पुरी जी की प्रसन्नता के लिए। ऐ दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदा अवलोक्य से हृदयम त्वद अलोक कातरम दैत भ्राम्यति किम करोति अहम्। कि हे स्वामी, हे सबसे दयालु स्वामी, मैं दोबारा आपके दर्शन कब करूंगी? आपको देखे बिना मेरा कातर हृदय असंतुलित हो चुका है। हे प्रियतम, अब मैं क्या करूं, है ना। सो आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, कैसे इसका मतलब समझे। इसका मतलब पूरे संसार में सिर्फ तीन व्यक्ति समझ सकते हैं, एक श्रीमती राधा रानी, एक स्वयं चैतन्य महाप्रभु और माधवेंद्र पुरी, है ना। इसका मतलब इन तीनों के अलावा और कोई भी समझ नहीं सकता। सो माधवेंद्र पुरी जो है उन्होंने विरह भाव में भगवान की सेवा कर रहे थे। उन्होंने दिखाया कि विरह भाव में कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, और उन्होंने अपने दो शिष्यों के द्वारा गुरु में श्रद्धा की शिक्षा दी। एक उनके शिष्य थे शिला ईश्वरपुरी और दूसरे उनके शिष्य थे रामचंद्रपुरी। तो उन्होंने अपने दोनों शिष्यों के माध्यम से बताया कि किस प्रकार अगर गुरु में अगाध श्रद्धा है या अगाध श्रद्धा नहीं है तो उसका क्या परिणाम होगा। तो जो शिला ईश्वरपुरी हैं वो बहुत अगाध श्रद्धा थी उनकी माधवेंद्रपुरी में। और माधवेंद्रपुरी केवल ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी के ही गुरु नहीं थे, उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भी दीक्षा दी थी। नित्यानंद प्रभु के भी गुरु हैं माधवेंद्रपुरी जी। सो शिला ईश्वरपुरी उनका मल मूत्र साफ करते थे उनके आखिरी दिनों में, और उनको सदैव कृष्ण नाम का स्मरण कराते थे। और शिला माधवेंद्रपुरी ने उनको बोला, ईश्वरपुरी को, कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं भगवान कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि वे तुम्हें अपनी कृपा प्रदान करें। और भगवान ने कृपा प्रदान की, उनको अपना गुरु स्वीकार किया। और दूसरी ओर जो रामचंद्रपुरी हैं उनकी अपने गुरु में इतनी श्रद्धा नहीं थी। जब माधवेंद्रपुरी ये श्लोक बोल रहे थे, आई दीन दयाद्र नाथ है, हाँ, जब वो श्लोक बोल रहे थे मैं आपका दर्शन नहीं कर पाया, पूरा जीवन वेस्ट हो गया मेरा, तो रामचंद्रपुरी उनको बोल रहे थे आप क्यों रो रहे हो, रोना आपको शोभा नहीं देता, आप भगवान का स्मरण करो, आप रो मत। तो माधवेंद्र पुरी जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा इस दुष्ट को भगाओ, एक तो पहले मैं बहुत परेशान हूं, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, ऊपर से ये मुझे और परेशान करने आ गया, तो भगा दिया उसको, है ना। तो जो रामचंद्र पुरी हैं वो शुष्क दार्शनिक बन गए, शुष्क दार्शनिक बन गए और दोष निकालने लग गए हर एक व्यक्ति में, है ना, दोष निकालना शुरू कर दिया। स्वयं चैतन्य महाप्रभु में दोष निकाल दिया उन्होंने, है ना। तो जिस पर गुरु की कृपा हट जाती है वो उसमें पहला जो गुण प्रकट होता है वो होता है कि वो दूसरे के दोष निकालना शुरू कर देते हैं। अगर आप देखते हो किसी भक्त को वो दोष निकाल रहा है, ये क्या कर रहे हो, वो कैसे हो गया, ये क्या चल रहा है, तो आप समझो कि गुरु की कृपा उससे हट रही है। हम लोगों को अगर आपकी सेवा नहीं है, कभी भी वैष्णवों में गुरु में कभी दोष नहीं देखने चाहिए, कभी दोष नहीं निकालने चाहिए, है ना। हमें ये समझना चाहिए कि यार हृदय कृष्ण प्रेम करे उदय तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञाना बुझे, कि जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम उदय हो चुका है उसके बाद उसकी क्रिया मुद्रा उसको बुद्धिमान भी नहीं समझ सकता, मैं तो फिर बेवकूफ हूं, है ना। सो हमें कभी भी वैष्णवों के अंदर कुछ कमी निकालनी नहीं चाहिए, है ना। और आज परमेश्वरी दास ठाकुर जी का तिरोभाव है, तो उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। परमेश्वरी दास ठाकुर, उनको परमेश्वर दास भी बोला जाता था, और उनके बारे में चैतन्य चरितामृत में लिखा है, परमेश्वर दास नित्यानंद एक शरण, कृष्ण भक्ति पाए तारे यार करे स्मरण। जो चैतन्य, जो परमेश्वरी दास ठाकुर का स्मरण कर रहे हैं, उसको कृष्ण प्रेम अनायास प्राप्त हो जाएगा उसको, है ना। और चैतन्य भागवत में लिखा है कि जो परमेश्वरी दास ठाकुर है, उनका जो शरीर है वो नित्यानंद प्रभु का प्लेग्राउंड है। नित्यानंद प्रभु उनके शरीर में निवास करते हैं, शरीर में उनके क्रीड़ा करते हैं, और द्वादश गोपाल में से एक है, पांचवें गोपाल है वो, है ना, परमेश्वरी दास ठाकुर अर्जुन। सो ये अर्जुन हमारे पांडव वाले अर्जुन नहीं है, वो कृष्ण बलराम के सखा जो अर्जुन है, है ना। और जब खेतरी ग्राम में नरोत्तम दास ठाकुर ने कीर्तन महोत्सव किया था, तो परमेश्वरी दास जो हैं वो वहाँ पर भी मौजूद थे, और परमेश्वरी दास ठाकुर ने आठपुर ग्राम है वहाँ पर, कलकत्ता के पास ही है ये भी, वहाँ पर उन्होंने जानवा देवी के कहने पर श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की सेवा आरंभ की थी वहाँ पर उन्होंने। आज भी वहाँ पर सेवा हो रही है, वो बात अलग है कि उनके जो वंशज हैं उन्होंने श्री राधा गोपीनाथ जी के दरबार में साथ में बलराम जी को भी स्थापित कर दिया है, जो कि शास्त्रीय दृष्टि से सही नहीं है, रसाभास का उसमें दोष है उसके अंदर। जहाँ भी श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण हैं, जो बलराम जी हैं वो उस स्थान से दूर रहते हैं, ताकि भगवान कृष्ण के रसास्वादन में कुछ भी बाधा नहीं है, उनको कुछ संकोच नहीं है उनको, है ना। सो लेकिन उनके परिवार वालों को आइडिया नहीं था, उन्होंने वहाँ पर उसी ऑल्टर में जाकर बलराम जी को भी स्थापित कर दिया। सो परमेश्वरी दास ठाकुर जब पानीहाटी में रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने नित्यानंद प्रभु के कहने पर दही चिड़वा जो है उसका महोत्सव किया था, तो परमेश्वरी दास ठाकुर वहाँ पर भी मौजूद थे, है ना। और एक बार और परमेश्वरी दास ठाकुर जानवी माता के साथ में वृंदावन भी गए थे, साथ में श्रीमती राधा रानी के विग्रह को लेकर, जो वो विग्रह लेके गए थे गोविंद देव जी की अर्चना के लिए। जब गोविंद देव जी जब रूपा गोस्वामी ने गोविंद देव जी के विग्रह जब खोज निकाले थे गोमती टीला से, है ना, सो उस समय श्रीमती राधा रानी के विग्रह नहीं थे, तो जब जानवा देवी वहाँ पर आई थी वृंदावन में, तो उन्होंने बोला था कि अगली बार मैं श्रीमती राधा रानी के विग्रह लेके आऊँगी। तो जब वो विग्रह अगली बार लेके गई, तो साथ में परमेश्वरी दास ठाकुर भी उनके साथ में गए थे उनके साथ में, और बहुत ही पावरफुल डिवोटी थे, बहुत ही इनमें बहुत कहा जाता है कि इनमें बहुत सुपर नेचुरल पावर्स थी। और इसमें क्या आश्चर्य की बात है, द्वादश गोपाल में से एक है, अगर इनमें नहीं पावर होगी तो क्या हम में होगी, नहीं। तो एक बार श्री रामपुर के पास में ही कमलाकर पिपलई, एक और गोपाल है द्वादश गोपाल में से एक है कमलाकर पिपलई, सो कमलाकर पिपलई का श्री पाठ है श्री रामपुर के पास में, और वहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर था, वहाँ पर कीर्तन चल रहा था, तो कुछ दुष्ट लोग थे, उन्होंने एक मरी हुई लोमड़ी उठाकर वो कीर्तन के बीच में फेंक दी उन्होंने, तो बहुत दुख हुआ परमेश्वर दास ठाकुर को, उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि उस लोमड़ी पर डाली, तो एकदम वो जीवित हो गई और वहाँ से भाग गई, वो जो कीर्तन का जो एरिया था वहाँ से निकल गई, और जब वो दुष्टों ने देखा तो बहुत डर गए, उन्होंने बोला कोई महान भक्त वहाँ पर बैठे हैं, कोई श्राप ना मिल जाए, वो भी वहाँ से भाग गए, है ना। सो आप सब प्लीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, कृष्ण भावना मृत में हर दिन उत्सव है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण जन्माष्टमी को ही जन्माष्टमी मनाएंगे, नहीं, या गौर पूर्णिमा को ही गौर पूर्णिमा मनाएंगे। अगर हमने गौर पूर्णिमा के दिन गौर पूर्णिमा मनानी है या कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनानी है, अगर हमने नरसिंह चतुर्दशी बहुत अच्छे से मनानी है, तो हमें जो बाकी के 364 दिन हैं, हमें उन सारे 364 दिन भी हमें भगवान का उसी प्रकार से हमें सेवा में लगे रहना पड़ेगा। अगर हमारी चेतना 364 दिन भगवान कृष्ण की सेवा में, भगवान कृष्ण के ये सोचना, भक्त को हमेशा सोचना चाहिए कि भगवान रोज प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि भगवान की हर लीला नित्य लीला है। नित्य लीला का मतलब है कि भगवान हर क्षण हर दिन भगवान कहीं ना कहीं प्रकट हो रहे हैं, हर दिन भगवान कहीं ना कहीं दामोदर लीला कर रहे हैं, हर दिन भगवान कहीं ना कहीं मक्खन चुरा रहे हैं। तो भक्तों को रोज हर दिन हर क्षण भगवान की इन लीलाओं पर हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। हर दिन हमें शिला प्रभुपाद का आविर्भाव महोत्सव बनाना चाहिए, तभी हम उस दिन सही मायनों में मना पाएंगे। अगर हम 364 दिन कुछ और कर रहे हैं, हम कृत्रिम रूप से 365वें दिन अपनी चेतना को वहां निवेशित नहीं कर पाएंगे। हम 5 मिनट सोचेंगे लेकिन 23 घंटे 55 मिनट कुछ और सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारा जो मन है, हमारी चेतना, वो अभ्यस्त नहीं है सोचने के लिए भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के बारे में। अगर हम वाकई में सही मायनों में अगर हम कोई उत्सव मनाना चाहते हैं, अगर हम आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव मनाना चाहते हैं, तो हमें साल के 365 दिन हमें उस चेतना में रहना पड़ेगा, तभी संभव है कि हम उस विशिष्ट दिन हम 24 घंटे उनका स्मरण कर पाएं, उनके बारे में सोच पाएं और उनकी जो लीलाएं हैं कृष्ण की और कृष्ण भक्तों की, उनकी लीलाओं का स्मरण कर पाएं और उससे कुछ प्रेरणा ले पाएं। अगर हम 364 दिन कुछ और करेंगे, आप आजमा के देख लो, आजमा के क्या देखना, आप सबको पता ही है, अपने हृदय में आप झांक के देख सकते हो। थोड़ा टाइम, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल ध्यान नहीं लगता, कुछ समय ध्यान लगता है, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट के बाद मन उचाट हो जाता है। यहां तक कि भगवान के अभिषेक में भी लोग इधर उधर झांक रहे होते हैं, नहीं? सो अगर हमने सही मायनों में मनाना है, तो रोज आप इस बात का ध्यान रखें, इस बात को स्मरण रखें, तभी हम भक्ति में भी आगे बढ़ पाएंगे और उस दिन को सही मायनों में हम सेलिब्रेट कर पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अगर आप किसी का कुछ टिप्पणी है या कुछ प्रश्न है तो आप कह सकते हैं।
हरे कृष्णा भाई जी, थैंक यू फॉर द लेक्चर। भाई मैं पूछना चाह रहा था, जैसे आपने बताया था कि श्रीनिवास आचार्य जब वो मेडिटेट करते थे, मानसिक सेवा करते थे, तो वो लीला में चले जाते थे और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से चीज़ें लेके आते थे यहाँ पे। मैं पूछना चाह रहा था वो कैसे पॉसिबल है, कैसे वो विजिबल होता था, क्योंकि स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ और यहाँ पे पंचभूत से चीज़ें जो हम देख पाते हैं, जो चीज़ें बनी होती हैं,
अचिंत्य चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं है ऐसे, है ना? जैसे एक उदाहरण हमारे पास रघुनाथ दास गोस्वामी जी का है कि उनका पेट खराब हो गया था खीर खाने से, नहीं? तो जब वैद्य ने बोला कि खीर खाई है उन्होंने, पेट खराब हो गया, तो उनके सर्वेंट ने बोला कि आपका दिमाग खराब हो गया, ये तो थोड़ी सी छाछ पीते हैं, तो कुछ भी करने से पेट खराब हो सकता है, खीर खाने से पेट खराब नहीं हो सकता। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला हाँ भैया, खीर खाई थी मैंने, उसी से पेट खराब हो गया। तो वो मानसिक जो सेवा में उनको श्रीमती राधा रानी ने खीर दी, वो खाई, पेट खराब हो गया उनका, है ना? सो इसके बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं है, लेकिन उदाहरण हैं, ये जानने के लिए, हमें ये समझाने के लिए कि मानसी सेवा भी कोई चीज़ होती है ना। लेकिन क्या हम मानसी सेवा कर सकते हैं? हम मानसी सेवा नहीं कर सकते, अभी हमारा वो स्तर नहीं है। अभी हमारा जो स्तर है कि हम अपने गुरु और जो हमारे वरिष्ठ गुरु भाई हैं उनके मार्गदर्शन में हम अच्छे से सेवा करें, तो कभी उनकी कृपा से हम कभी उस स्तर पे पहुंच सकते हैं, हमारा लक्ष्य है। लेकिन आज हम नहीं हैं और ना ही हम इसको समझ सकते हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है। लेकिन जब हम उस स्तर पे पहुंचेंगे तो अवश्य हम इस बात को समझ पाएंगे कि कैसे संभव है ये चीज़, है ना। ठीक है, अभी समझना मुश्किल है, इसीलिए भगवान और भगवान के भक्तों की लीला अचिंत्य है, नहीं समझा जा सकता। ठीक है, शिला प्रभुपाद की, हरे कृष्ण।